मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 29 अगस्त 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल हम परिवार के साथ मूल्यों का तालमेल कैसे बैठाएं इस विषय पर बात कर रहे थे और यह विषय आप सब ने ही सुझाया था और सच है कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय भी था और मुझे इस बात पर तब और ज्यादा यकीन हो गया जब कल मुझे इसके फेवर में मेल मिले और अनुरोध किया आप लोगों ने ही कि सर इस पर थोड़ी सी और अधिक व्यावहारिक बातें की जाएं क्योंकि वास्तव में ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, तो आज मैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा और बहुत संभव है कि आज हम मेरी बात यह पूरी भी हो जाए और इसके बाद भी यदि आपके मन में इस विषय को लेकर के कुछ सवाल हों तो आप बिल्कुल मुझे मेल लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आधा अधूरा रह जाता है तो आपके दिमाग में एक शंका या यूं कह लीजिए कि एक प्रश्न कुलबुलाता रहता है और फिर वह प्रश्न आपको उसके प्रति विश्वास हासिल करने में कहीं ना कहीं कमजोर बनाता रहता है। तो बहुत जरूरी है कि हमारी शंकाओं का निवारण हो और यदि मैं अपने लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से उसका उत्तर नहीं दे सका तो व्यक्तिगत रूप से आपको ईमेल के जरिए उसका उत्तर निश्चित रूप से मिलेगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। देखिए, एक शब्द है मित्रों इसमें तालमेल, और सच पूछे तो यह शब्द मैंने आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा था उसी से ही लिया, उसमें शब्द का इस्तेमाल किया गया था तालमेल, और ये बहुत प्यारा शब्द है और बहुत उदारवादी शब्द है और सच पूछे तो बहुत ही व्यावहारिक शब्द है। वो ये नहीं कह रहे कि परिवार के मूल्यों को कैसे बदलें। देखिए, जहां बदलने की बात होती है वहां सारी चीजें एकतरफा हो जाती हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि बदलें, यानी कि आप अपने परिवार के सारे मूल्यों को यानी कि परिवार वालों की सारी सोच को आप गलत मान रहे हैं और इतना गलत मान रहे हैं कि आप उनको बदलने के लिए बिल्कुल तुले हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि जब तक ये बदले नहीं जाएंगे ये मूल्य, तब तक मेरा जीवना मुश्किल हो जाएगा, मेरा विकास मुश्किल हो जाएगा या हमारे परिवार का विकास रुक जाएगा, हम ये सोचते हैं। लेकिन मित्रों, सोच करके देखिए कि जो हम तानाशाही कहते हैं, जिससे डिक्टेटरशिप कहते हैं, और आप खुद भी उस डिक्टेटरशिप को पसंद नहीं करते, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो वह एक तरह की तानाशाही ही है? आप खुद सोच करके देखिए कि अगर कोई व्यक्ति आप पर तानाशाही आदेश जारी करता है आपके ऊपर, आपको कहता है कि आपको करना ही है और आप कि उसमें कुछ नहीं चलती, ना आप उसके बारे में सोच सकते हैं, ना उसके बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ना उसमें बदलाव के लिए उन्हें कह सकते हैं, तो आप उसे भले ही स्वीकार कर लें लेकिन मन से स्वीकार नहीं करेंगे। और जब तक बातें मन से स्वीकार नहीं की जाएंगी, आदेश ही कह लीजिए कि मन से स्वीकार नहीं की जाएंगी, तब तक उसका पालन तो हो जाएगा लेकिन वो हमारे आचरण में उतरेगा नहीं, पहली बात, और दूसरा वो स्थायी भी नहीं रहेगा। ठीक है, जब तक आप हैं तब तक उसका पालन हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर एक भय है आपका, और जैसे ही आप किनारे हो जाएंगे किसी भी वजह से, वैसे ही हम अपने पुराने ढर्रे पर फिर से आ जाएंगे। इसलिए मित्रों, परिवर्तन की जगह तालमेल शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है और सच पूछे तो उससे भी बड़ी बात यह कि यह बहुत ही व्यावहारिक शब्द है। देखिए, जब भी कोई संघर्ष होता है, चाहे वो मूल्यों का संघर्ष हो, व्यक्तियों का संघर्ष हो, या फिर जमीन और जायदाद, पारिवारिक जमीन और जायदाद की बात मैं कर रहा हूं, मैं कानूनी जमीन और जायदाद की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि कानूनी निर्णय तो किसी एक के पक्ष में होता है, बहुत कम ही होते हैं जब समझौते वाली स्थिति आती है। हाँ, लोक अदालत वगैरह ये सब काम कर देते हैं, या जो हमारे परिवार के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो फिर आपस में समझौता कराते हैं, अदरवाइज अदालत तो एक तरफा निर्णय देती है। लेकिन जो मूल्यों की बात है, क्योंकि वो हमारे अपने ही लोगों के बीच में है, तो स्वाभाविक है कि यहां तालमेल ही काम करेगा, समझौता ही काम करेगा। इसके लिए एक और प्यारा सा शब्द है, वो है सामंजस्य। ये युद्ध नहीं है। देखिए, युद्ध में होता क्या है कि राजा, दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ, एक बुरी तरह से पराजित हो गया। तो अब जो पराजित राजा है, जो शासक है, उसके सामने सरेंडर करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उसे सीधे सीधे अपने को समर्पण करना पड़ेगा। और जो जीता है, जो विजयी शासक है, वो अपनी बात मनवाएगा, और नहीं मनवाएगा तो नहीं, अगर वो मानेगा तो कहेगा कि ठीक है, तुम या तो जेल में सड़ो या हम तुम्हारी हत्या कर देते हैं, तुम्हारे राज्य पर तो हमारा अधिकार हो ही गया है। तो वहां हार जीत है, लेकिन परिवार के साथ हम हार जीत के इस थ्योरी को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। फिर तो दोनों एक दूसरे के सामने अड़ जाएंगे, और जब अड़ जाएंगे तो क्या होगा? याद रखिए कि फिर आपका काम तो नहीं बना ना, क्योंकि वो बड़े हैं परिवार के, जिनके आप मूल्यों को बदलना चाह रहे हैं। याद रखिए कि वो उम्र में बड़े हैं, उम्र में बड़े होने के नाते जो हमारा एक पारिवारिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी फैमिली संरचना है, उस फैमिली स्ट्रक्चर में बड़ों का सम्मान होता है, उनका अपर हैंड होता है। ये हमारे संस्कारों में है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य है, या कह लीजिए कि कहीं ना कहीं नैतिकता भी है। तो इसे तो हम एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते। और याद रखिए, जब आप बड़े हो जाएंगे तो अगर आपके छोटे आपको इग्नोर करेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सीधी सी बात है कि जो हमको अच्छा नहीं लगेगा वो हम दूसरों को भी अच्छा लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमें समझना चाहिए कि हमसे यहां कोई गलती हो रही है और उस गलती को हम दुरुस्त करें। तो अब आप क्या करेंगे? करेंगे ये कि कुछ समर्पण भी करने की सोचेंगे, यानी कि आप उनकी भी बातों को कुछ सीमा तक मानेंगे, तब जाकर के तालमेल होगा। और जब आप मानेंगे तब उनके दिमाग में भी ये स्पेस बनेगा कि यार हमारी देखो इतनी बात तो ये मान रहा है, तो इसकी इतनी बात हमें भी मान लेनी चाहिए। यानी कि जो दिमाग के दरवाजे हैं और दिल की जो खिड़कियां हैं, वो दोनों की फिर खुलने लगेंगी। तो आपको वो खुली रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात में तो इससे तालमेल होगा। दूसरी बात जो है वो है, याद रखिए कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। एक दिन, दो दिन, एक महीने, दो महीने में होने वाली नहीं है, इसमें सालों लगेंगे। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है कि मैं सालों तक इंतजार कर सकूं। अब इसका क्या चारा है? मित्रों, कुछ मूल्य तो ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे तेजी के साथ बदलने शुरू हो जाते हैं, जिनको आप कह लीजिए कि एक तरह से सब्सिडरी टाइप के वैल्यूज होते हैं, जो सामान्य किस्म के होते हैं। लेकिन जो बहुत गहरे होते हैं, जो हमारी परंपराओं से, रीति रिवाजों से बहुत गहरे रूप में जुड़े होते हैं, उन्हें बदलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। उसके लिए तो आपको वक्त देना ही होगा अगर आप उनके साथ तालमेल बैठाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपको वक्त देना ही होगा। वक्त देना ही होगा का अर्थ दो बातों से है। पहला तो यह है कि नो डाउट उसमें साल, दो साल, छह महीने कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोशिश की जाए और सही और संतुलित कोशिश की जाए तो किसी भी बात को अपने परिवार के बुजुर्गों को समझाने में 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं लगता है। अब डिपेंड जरूर इस बात पर यह करता है कि आपके समझाने की शैली कितनी है, आप में कौशल कितना है, आपके पास समझाने के लिए कितने प्रभावशाली तर्क हैं, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। तो अब आप देखिए कि क्या करेंगे। मैं अब आपको दो तरीके, दोस्तों दो तीन तरीके आपको बताऊंगा। पहली बात तो देखिए यह है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं इस काम को करूं, तो आपको अपने परिवार वालों को समय देना होगा, यानी कि उनके साथ वक्त गुजारना होगा। उनके साथ कोशिश कीजिए कि भोजन पर बैठ मिलकर बात कर रहे हैं, या जो दूसरे अवसर हैं उन पर बैठ मिलकर बात कर रहे हैं। और ये जो बातचीत होनी चाहिए कोई क्लास लगने जैसी नहीं होनी चाहिए कि बैठिए मैं आपको समझाता हूं, वो बहुत ही अनौपचारिक होनी चाहिए, इनफॉर्मल होनी चाहिए कि बस बैठे हैं, बातचीत हो रही है और बातचीत के दौरान वो बात निकल गई है। इसके लिए आपको अलग से समय देना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? दूसरी बात जो कम महत्वपूर्ण नहीं है फ्रेंड्स, वो ये है, आप देखिए आप गांव में हैं, शहर में हैं, देश में हैं, दुनिया में हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, उसमें रोजाना कितनी सामाजिक घटनाएं घटित होती रहती, कितनी सारी सामाजिक घटनाएं, सांस्कृतिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। बातचीत के दौरान कोशिश कीजिए कि इनडायरेक्टली आप उनमें से किसी एक घटना को उठाइए, जिन मूल्यों को आप बदलना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपको रोज घटनाएं मिल जाएंगी, उस पर बातचीत शुरू कीजिए, इनफॉर्मल बातचीत शुरू कीजिए। जब आप इनफॉर्मल बातचीत शुरू करेंगे तो देखिए अब बात आपके अपनी चीजों से नहीं है और मूल्यों को बदलने की नहीं है, उनके दिमाग में उन मूल्यों को बदलने के लिए जो पृष्ठभूमि बनाई जानी चाहिए उनकी है। तो जब उन घटनाओं पर विश्लेषण हो तो बड़े संतुलन के साथ बिना तैश में आए, याद रखिए मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि युवा बहुत जल्दी तैश में आ जाते हैं, बिना तैश में आए आप अपनी बात को रखिए। और इस तरह से मत रखिए कि मेरी मुर्गी के तीन टांग, आप इस तरीके से रखिए कि इसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है, इसके बारे में मैंने कल भी बात की थी, ये जिस समय ये परंपरा बनी उस वो समय कौन सा था, क्यों बनाई गई, उस समय इसके बनाए जाने के क्या क्या फायदे हो रहे थे, फिर कैसे इसमें धीरे धीरे बदलाव आता चला गया, आज इसे बदलने की क्यों जरूरत है, और यदि नहीं बदला गया तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कुछ आपको समाज के बड़े अच्छे जीवंत उदाहरण मिल जाएंगे कि वहां इनको बदला गया तो देखिए वहां सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, वहां कोई नुकसान नहीं हुआ, किस तरीके से यह बदलाव हमारे जीवन को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। बातों बातों में आप ये भी बता सकते हैं कि आप जिन मूल्यों को लेकर के चल रहे हैं वो मूल्य आपके दादा के समय में कुछ दूसरे थे तो आपने भी उसे बदला है। तो इस तरीके से बड़े संतुलन के साथ जब आप अपनी बात रखेंगे, थोड़ा वक्त देकर बात रखेंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो चीजें उनके दिमाग में रचती बसती चली जा रही हैं और आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ी सी कुछ और बातें आपके सामने रखी हैं जो बड़े व्यवहारिक किस्म की हैं, तो आप इन सब पर विचार करें, कोशिश भी करें, और आपके कोशिश करने पर कुछ आपको दिक्कतें आ रही हो तो आप मुझे सूचित कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं फिर से जहां से आपको रास्ता बंद दिखाई दे रहा है वहां से कोई रास्ता बता सकूं, छोटी सी पगडंडी ही सही। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं क्योंकि ये अच्छी भावना है, जो पुरानी चीजें हैं जो जड़ हो चुकी हैं उन्हें बदला ही जाना चाहिए, और इस बदलाव का काम सही मायने में युवा वर्ग ही आप सभी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।